नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। आधार पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून थी और कई पैन धारक अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने आधार को पैन से लिंक नहीं करवाया और उनका पैन कार्ड रद्द हो गया। पैन रद्द होने के बाद कई NRI OCIs ने अपने परमानेंट अकाउंट नंबर के रद्द होने को लेकर चिंता जाहिर करते हुए सवाल उठाए। अब आखिरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बारे में स्पष्टीकरण देते हुए नए सुझाव दिए हैं। टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक जिन नॉन रेजिडेंट इंडियंस और विदेशी नागरिकों का पैन आधार से लिंक न होने के कारण इनवैलिड हो गया है, उन्हें पैन को वैलिड कराने के लिए ज्यूरिसडिक्शन असेसिंग ऑफिसर JAO को अपने रेजिडेंशियल स्टेटस का प्रूफ जमा कराना होगा। जिन NRI और OCI ने टैक्स डिपार्टमेंट को अपने रेजिडेंशियल स्टेटस सबमिट कर दिया है, उनके लिए पैन और आधार को लिंक करना जरूरी नहीं है। हालांकि कई NRI ने शिकायत की है कि 30 जून तक आधार पैन लिंक करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद उनका पैन इनवैलिड हो गया। टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर किसी NRI ने पिछले 3 असेसमेंट ईयर में कोई ITR फाइल किया है जो उनका रेजिडेंशियल स्टेटस विभाग के पास जमा हो चुका है, या फिर उन्होंने ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर JAO के पास अपना रेजिडेंशियल स्टेटस सबमिट किया हुआ है, सिर्फ उन NRI का पैन ही इनवैलिड हुआ है जिन्होंने इन दोनों में से एक भी क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है। लोगों से चंदा आदि प्राप्त करने वाले क्राउड सोर्सिंग मंचों को अब परामर्श कार्यों के लिए दान मांगते समय इस बात का खुलासा करना होगा कि उन्होंने इसके लिए क्या शुल्क लिया है। विज्ञापन उद्योग के लिए स्वनियमन निकाय ASCI ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। क्राउड सोर्सिंग मंच लोगों के समूह से जानकारी राय चंदा संग्रह का काम करता है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI ने परमार्थ कार्यों के लिए विज्ञापनों को लेकर जारी दिशा निर्देश ये भी साफ किया कि समस्या से घिरे पीड़ितों, विशेषकर बच्चों और नाबालिगों की तस्वीरों का उपयोग विज्ञापनदाताओं को नहीं करना चाहिए। इसमें कहा गया, यदि कोई क्राउडसोर्सिंग मंच दानदाता से कोष जुटाने या उसके प्रबंधन के लिए कोई शुल्क लेता है तो स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ऐसी राशि कितनी है। उल्लेखनीय है कि कैटो जैसे क्राउडसोर्सिंग मंच लोगों से धर्मार्थ कार्यों के लिए किए गए दान का 5% हिस्सा लेते हैं। परिषद के अनुसार हाल के समय में ये देखा गया कि धर्मार्थ संगठन कोष एकत्रित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। गैर लाभकारी संस्थान स्वयं प्रचार प्रसार कर या फिर प्रायोजित विज्ञापनों के माध्यम से संभावित दानदाताओं तक पहुंचते हैं। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की मुख्य कार्यपालक अधिकारी और महासचिव मनीषा कपूर ने कहा, ASCI ये मानती है कि परमार्थ संगठनों का काम चुनौतीपूर्ण है। वह प्रायः संवेदनशील और महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े होते हैं तथा जरूरतमंदों के लिए कोष जुटाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ता संगठन IOE के महासचिव रॉबर्टो सुआरेज सेंटोस ने बृहस्पतिवार को कहा कि कृत्रिम मेधा AI के कारण रोजगार जगत में आ रहे बदलावों को डर या रूढ़िवादी सोच के बजाय रचनात्मक नजरिए से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में रचनात्मक नजरिया ये है कि इस बात पर गौर किया जाए कि AI सरीखी अत्याधुनिक तकनीकों का फायदा उठाकर कर्मियों के लिए किस तरह नए मौके पैदा किए जा सकते हैं। सेंटोस ने इंदौर में PTI भाषा से कहा, हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आने वाले दिनों में अधिकांश परंपरागत काम गायब नहीं होंगे, लेकिन AI जैसे नई तकनीकों के कारण इनको करने का तरीका जरूर बदल जाएगा। सेंटोस कामकाज के भविष्य, कौशल विकास और गतिशीलता पर B20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे। B20 कारोबार के वैश्विक समुदाय के संवाद के लिए G20 समूह का आधिकारिक मंच है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा स्थित IOE के महासचिव ने कहा कि AI सरीखी तकनीकों के कारण रोजगार जगत में आ रहे बदलावों को डर या रूढ़िवादी सोच से नहीं देखा जाना चाहिए। SJVN की अनुषंगी कंपनी SJVN ग्रीन एनर्जी ने महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड MSEDCL को 200 मेगावाट सौर बिजली और SECI को 100 मेगावाट पवन ऊर्जा की आपूर्ति के 1,950 करोड़ रुपए मूल्य के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने BSE को दी गई सूचना में कहा कि महाराष्ट्र में 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने पर करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये परियोजना दिसंबर 2024 में पूरी होने की उम्मीद है। उत्पादन शुरू होने के पहले साल में 4,560 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी और पूरे 25 वर्षों के काल में 1,04,810 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। SJVN ग्रीन एनर्जी 750 करोड़ रुपए की लागत से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI के लिए 100 मेगावाट क्षमता की एक पवन ऊर्जा परियोजना भी लाएगी। इसके मार्च 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है और यह 25 वर्षों के पूरे कालखंड में 72,317.5 लाख यूनिट बिजली पैदा करेगा। बिजली का सामान और उपकरण बनाने वाली कंपनी हेवल्स इंडिया लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में 18% बढ़कर 287 करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 243 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी आय बढ़कर 4,899 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 4,292 करोड़ रुपए थी। हेवल्स इंडिया के चेयरमैन एवं बंध निदेशक अनिल राय गुप्ता ने कहा, उपभोक्ता मांग सुस्त है और बेमौसम बारिश से B2C कारोबार प्रभावित हुआ है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।